श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदावन जय जय त्रिचैतन्य जय नित्यानंदा श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदावन द्वाशु की अद्वैताचार्य का आविर्भाव है तो हम चैतन्य भागवत से अद्वैताचार्य की लीला को पढ़ के सुना रहे हैं और कुछ बातें हैं उस समय की जब भगवान चैतन्य का आविर्भाव नहीं हुआ था। हाँ, तो उस नवद्वीप में अद्वैताचार्य निवास करते थे। किस समय? जब चैतन्य महाप्रभु ने जन्म नहीं लिया। जो सब लोगों में श्रेष्ठ थे, इनका एक घर शांतिपुर में भी था, तो कभी ये नवद्वीप में रहते और कभी शांतिपुर में रहते थे। ज्ञान भक्ति और वैराग्य की शिक्षा देने में दूसरे गुरुओं में सबसे श्रेष्ठ थे। तीनों की शिक्षा देते थे। श्री कृष्ण भक्ति वर्णन करने में ये किसके समान थे? शंकर जी के समान थे अद्वैताचार्य। त्रिभुवन में जितने शास्त्र प्रसिद्ध हैं उन सब के सार रूप में ये श्री कृष्ण चरण भक्ति को ही सदा प्रतिपादन करते थे। और क्या करते थे? गंगा जल में तुलसी मंजरी डालकर निरंतर श्री कृष्ण की आनंद पूर्वक सेवा करते थे। से नवद्वीपे वैसे वैष्ण माग्रह गण अद्वैत आचार्य नाम सर्वलोके धन्य ज्ञान भक्ति वैराग्य रे गुरु मुख्य तर कृष्ण भक्ति बखान तेजे न शंकर त्रिभुवन आछे जत शास्त्र पर चार सर्वत्र बखान कृष्ण पद भक्ति सार तुलसी मंजरी सहित गंगा जले निरवधि सेवे कृष्ण महाकुतूहले। ये श्री कृष्ण आवेश की तीव्रता में प्रेम हुंकार करते थे। इनकी हुंकार ध्वनि ब्रह्मांड को भेद कर बैकुंठ में सुनाई देती थी। समझ रहे हो? इनकी हुंकार ध्वनि, हुंकार ध्वनि क्यों करते थे? कृष्ण के प्रेम में। उनकी इस प्रेम हुंकार को सुनकर भगवान श्री कृष्ण इनकी भक्ति के वशीभूत होकर आविर्भूत हुए। इसलिए अद्वैताचार्य वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों सबसे श्रेष्ठ हैं वैष्णवों में अद्वैताचार्य? क्यों श्रेष्ठ हैं? इनकी हुंकार ध्वनि को सुनकर के ही भगवान को आना पड़ा, अवतार लेना पड़ा। तुम्हें अपने हुंकार से भगवान को बुला लिया इस संसार में। एवं समस्त ब्रह्मांड में इनका भक्ति योग धन्य धन्य है। हुंकार काराय कृष्ण आवेसे रे तजे जे ध्वनि ब्रह्मांड भेदे वैकुंठे ते बाजे जे प्रेम हुंकार सुनिया कृष्ण नाथ भक्ति वसे आपने हई न साक्षात अतएव अद्वैत वैष्णव अग्रगण निखिल ब्रह्मांड चार भक्ति योग धन्य। अद्वैताचार्य बड़े दुखी होते थे। क्यों? नदियां में लोगों को देखते थे क्या भक्ति शून्य है। देखो जहां चैतन्य महाप्रभु को प्रकट होना था वहां का क्या बुरा हाल हो रहा है, लोगों में भक्ति नहीं है। अद्वैताचार्य जब देखते हैं तो क्या लगता है उनको? कैसा लगता है? बहुत दुख होता है, बड़े दुखी होते हैं। पूरा संसार विषय सुखों में मदमस्त हो रहा है। ए मत अद्वैत बैसे ने नदी आए भक्ति योग भक्ति सुन सब लोग देखी दुख पाए। तो अद्वैताचार्य ये देख करके मन में बहुत बहुत दुख पाते थे। कृष्ण सुने मंगल देवेर नहीं सुख, विशेष अद्वैत बड़ पाए मन दुख। अद्वैताचार्य का हृदय करुणा से भरा हुआ था, ये दयावश जीवों के उद्धार की सदा इस प्रकार चिंता किया करते थे। अब देखो उनको क्या चिंता होती थी, किस प्रकार चिंता करते थे उद्धार करने के लिए। मेरे प्रभु श्री कृष्ण यदि स्वयं अवतार लें तभी सभी जीवों का उद्धार हो सकता है, तभी अद्वैत सिंह मेरा नाम सार्थक होगा। सिंह अपने को क्यों कहते हैं, सिंह 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 हुंकार करता है, गर्जना करता है ना, तो ये गर्जना इतनी तेज गर्जना करते थे कि भगवान को आना पड़े, है ना, तो इसलिए अद्वैत सिंह, मेरा अद्वैत सिंह नाम तभी सार्थक होगा जब मैं वैकुंठ नाथ के दर्शन सबको यहां कराऊंगा। श्री कृष्ण को यहां अवतीर्ण कराकर उनके दर्शन कर नृत्य गान करते हुए सब जीवों का उद्धार करूंगा। स्वभावे अद्वैत बड़े कारुण्य हृदय, जीवेर निस्तार चिंते हई या सदय, मोर प्रभु आशी अधि करे अवतार, तबे हय ए सकल जीवेर उद्धार। तबे ता अद्वैत सिंह अमर बढ़ाई, वैकुंठ वल्लभ यदि देखाई ए थाई, आनिया वैकुंठ नाथ साक्षात करिया, नाचिव गाइव सर्व जीव उद्धारिया। आगे स्वयं भगवान को अवतीर्ण कराने का दृढ़ संकल्प लेकर अद्वैत प्रभु निरंतर एकाग्रचित होकर श्री कृष्ण का पूजन करने लगे। क्यों पूजा करते थे कृष्ण की, क्यों पूजा करते थे, कि अवतार लें भगवान, अवतार कराऊंगा भगवान का, इसलिए पूजा करते हैं। उनकी प्रार्थना पर ही श्री चैतन्य अवतार हुआ, ये बात अनेक बार श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहा करते थे। निरवधि ऐ मत संकल्प करिया, सेवे न श्री कृष्ण चंद्र एक चित्त हयाम, अद्वैतेरा कारण चैतन्य अवतार, से प्रभु कहिया आछिन बार बार। अब आगे की जो घटना है वो सुनो। भगवान चैतन्य जो है जन्मे और फिर बाल लीलाएं करी, इसके बाद फिर कैसोर लीला करते हैं भगवान, है ना, और आगे चल करके फिर चैतन्य महाप्रभु अपना प्रकाश करते हैं, यानी कृष्ण भक्ति का प्रचार शुरू करते हैं। तो उस समय की घटना है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरित्र देख देख करके भक्त लोग जो है बड़े प्रसन्न होते हैं और चकित होते हैं और अद्वैताचार्य को जाकर के बताते हैं चैतन्य महाप्रभु के चरित्र। तो भक्तियों के प्रभाव से बलवान अद्वैत सब जानते हैं, भक्ति के बल से अद्वैत सब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु का कपट, कि भगवान जो है ना अपने को छिपा रहे हैं और मनुष्य की लीला कर रहे हैं, लेकिन है क्या, भगवान है। तो भगवान का कपट भक्ति के सामने नहीं चलता, तो ये जो ना भक्ति के बल से सब जानते हैं कि प्रभु ने अवतार लिया है, फिर भी अद्वैत प्रभु का तत्व तो कुछ समझ में नहीं आता है, कारण कि क्षण में प्रकट होकर तत्काल छिप जाते हैं। भक्तों की बात सुनकर अद्वैत बड़े प्रसन्न हुए और बड़े आवेश में आकर कहने लगे,
हे भाइयों सुनो, कल रात्रि को गीता के एक पाठ का अर्थ समझ ना पाने से मैं बिना कुछ खाए पड़ा रहा। कुछ रात बीत जाने पर किसी ने मुझसे कहा, आचार्य दुख ना मानो, उस पाठ का अर्थ यह है, अब उठकर भोजन करो, जिस कार्य के लिए तुमने संकल्प किया था वह तो सफल हो गया, तुम्हारे प्रभु अब प्रकट हो गए हैं। इतने में मेरी आंखें खुली, मैंने देखा कि यही विश्वंभर मेरे देखते देखते अंतर्धान हो गया। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण की कृपा सब पर होगी और यह सब संसार श्री कृष्ण नाम में मत होगा। यदि यह बात सच्ची है, अर्थात यदि श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, तो उनको स्वयं ही इस ब्राह्मण अद्वैत के घर आना होगा।
ये कहते कहते आनंद के मारे अद्वैत प्रभु जोर जोर से हुंकार करने लगे, और सब वैष्णव जय जयकार करने लगे, सब मुख से हरि बोल पुकारने लगे। वहां हरिनाम संकीर्तन के रूप में श्री कृष्ण का अवतार हो गया। आनंदे अद्वैत कारे पारम हुंकार, सकल वैष्णव कारे जय जय कार, हरि हरि बलि डाके बदन सभार, उठे कीर्तन रूप कृष्ण अवतार। अच्छा, अब एक दिन चैतन्य महाप्रभु याद करते हैं अद्वैताचार्य को। अद्वैत ने क्या संकल्प किया है कि भगवान स्वयं ही मुझे बुलाएं, है ना। अगर वो मेरे बुलाने से आए हैं तो अब वो मुझे बुलाएं, तभी मैं मानूंगा। तो अद्वैताचार्य मिलते नहीं हैं, भगवान के पास नहीं आ रहे हैं। देखा कितना भक्त का भी जो है ना कैसा संकल्प होता है। तो वो भगवान ने भगवान को बुलाया अद्वैताचार्य ने, और अब भगवान के पास नहीं आ रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, भगवान मुझे खुद ही बुलाएं, है ना। तो एक दिन श्री महाप्रभु ने ईश्वर आवेश में मग्न होकर रमाई पंडित को आज्ञा दी। भगवान ईश्वर आवेश में कहते हैं, रमाई तुम अद्वैत के घर जाओ और उनको मेरा संवाद सुनाओ। उनसे कहना जिनको प्रकट करने के लिए तुमने इतनी आराधना की, जिनके लिए तुम इतने रोए और तुमने इतना व्रत उपवास किया, वे तुम्हारे प्रभु आकर प्रकट हो गए हैं, अपना भक्ति योग लुटाने के लिए आए हैं। आप शीघ्र ही वहां जाकर आनंद में विशिष्ट स्तुति पूजा और नृत्य करो। भगवान कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, रामायण पंडित से कह रहे हैं कि अद्वैताचार्य के पास जाओ। और अद्वैताचार्य कहां पर हैं, शांतिपुर में चले गए, और दूर चले गए जानबूझ करके, भगवान से दूर चले गए हैं। अब भगवान रामायण पंडित से कहते हैं कि बोलो कि वो विशेष स्तुति पूजा करो, तुमने इतना बुलाया इतना रोए और मैं आया हूं और अब तुम दूर भाग गए हैं, कैसे तुम दुष्ट हो। भगवान का ये कहना, उनसे एकांत में नित्यानंद का आगमन भी कहना और जो कुछ तुमने देखा है वो सब कहना, उनको मेरी पूजा की सामग्री और उपहार को लेकर स्त्री सहित तुरंत ही यहां आने के लिए कह दो। एक दिन महाप्रभु ईश्वर आवेश, रामाई रे आज्ञाकारी लेन पूर्ण रसिन, चला रामाई तुम्हें अद्वैते रे बांस, तार स्थान का गिया आमर प्रकाश, जार लागे कारीला विस्तार आराधन, जार लागे कारी आछ विस्तार क्रंदन, जार लागे कारीला विस्तार उपवास, से प्रभु तुमार लागी हईला प्रकाश, भक्ति योगे विलाई ते तार आगमन, अपनी आसिया झाट करे विवर्तन, निर्जन कहियो नित्यानंद आगमन, जे किछु देखी ले तार कहियो कथन, आमारे पूजार सज्जे उपहार लैया, जाट आसी बारे बोल सत्री के हैया। अब श्रीवास के छोटे भाई थे रामाई पंडित, तो प्रभु की आज्ञा के सिरोधार्य करके उसी समय हरि का स्मरण करते हुए चल पड़े। रामाई आनंद में बेहबल होकर चले जा रहे हैं, रास्ते का भी ध्यान नहीं रहता है। चैतन्य प्रभु की आज्ञा को लेकर वे वहां पहुंचे। रमाई पंडित ने अद्वैताचार्य को नमस्कार किया, परंतु आनंद में कुछ कह नहीं पाते हैं, इतना आनंद है। अद्वैत प्रभु भक्ति के प्रभाव से सर्वज्ञ हैं, अतः वे पहले समझ गए। रमाई पंडित तो कह नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं कह पा रहे हैं, रमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु का संदेश कह नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं कह पा रहे हैं, है? आनंद के कारण, इतना आनंद हो रहा है उनको कि वे कह नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे हैं। आप लोग सुनते नहीं ठीक से कोई, आनंद के कारण कुछ कह नहीं पा रहे हैं। नहीं, अद्वैत प्रभु ने क्या पूछा उनसे कुछ, है? नहीं पूछा, समझ गए क्यों, भक्तियों के बल से वो समझ गए, और कि मेरे लिए प्रभु की आज्ञा आई है। रामायण को देखकर हंसकर बोले, मालूम होता है मुझको लाने के लिए तुम्हें आज्ञा हुई है। वो दिन रात उन्हीं का चिंतन करते थे, तो क्यों नहीं समझेंगे। रामायण पंडित हाथ जोड़कर बोले, आप तो सब जान ही गए हैं, अतः चलिए शीघ्र। तब तो आचार्य आनंद में बेहबल हो गए, उनका शरीर कहाँ है उन्हें ज्ञान नहीं रहा। जानते हुए भी अनजान किसी अनेक बातें कहने लगे हैं, जैसे कुछ जानते नहीं। तो क्या कहते हैं, मनुष्यों के भीतर ईश्वर कहाँ से आ गए? जानते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। नदियां में अवतार होना किस शास्त्र में लिखा है? मेरी भक्ति, मेरा अध्यात्म, वैराग्य और ज्ञान तेरा भाई श्रीवास भरी प्रकार जानता है। तो रामायण पंडित जानते थे अयोध्याचार्य के चरित्र को, लेकिन कुछ उत्तर ना देकर मन ही मन में हंसने लगे। अयोध्याचार्य के ऐसे ऐसे जो चरित्र हैं वे बड़े ही अगाध हैं, पुण्यात्मा को समझ सकते हैं इसलिए मंगलकारी हैं, किंतु कुकर्मी जीव उन्हें ना समझकर दोष देखते हैं उनमें, इसलिए उनको बाधा होती है। अद्वैत बोले, रमाई पंडित कहो तो सही, किस कारण से अचानक तुम्हारा यहां आना हुआ है? रमाई पंडित समझ गए कि अब आचार्य देव का चित्त स्थिर हुआ है, अतएव रोकर बोले, श्रीवास अनुज राम आज्ञा से रे करी, सही क्षण चली लक्ष्मी हरी हरी, आनंद बेहवाले पथ न जाने रामाई, चैतन्य रे आज्ञा लैया गेला से ठाई, आचार्य रे नमस्कार रामाई पंडित, कहिते न पारे कथा आनंदे पूर्णित, सर्वज्ञ अद्वैत भक्ति योग रे प्रभावे, आये रे प्रभु रे आज्ञा जानिया छे आगे, रामाई देखिया से बुलाए बचन, बुझी आज्ञा हैल आमानी वारे कारण, कर जोड़ करे बोले रामाई पंडित, सकल जानी अच्छा चला त्वरित, आनंद देहवल हैला आचार्य गोसाई, केन नहीं जाने दे आछे कौन ठाई, के बोझाए अद्वैतेर चरित्र गहन, जानी आओ ना नामत कहाँ ए कथन, कोथा रे गोसाई आईला मानुष भीतरे, कौन शास्त्र बोले न दियाए अवतरे, मोर भक्ति अध्यात्म वैराग्य ज्ञान मोर, सकल जाना है श्रीनिवास भाई तोर, अद्वैतेर चरित्र रामाए बाल जाने, उत्तर न कर के चुहा से मने मने, हे मत अद्वैतेर चरित्र आगाध, सुकृत रे भाल दुष्कृत रे कार्य बाध, पुनः बोले कहाँ कहाँ रामाई पंडित, कि कारण तुम्हारे गमन अचंबित, बुझी लेने आचार्य है लसंद चित्त, तखने कांदी अकाहे रामाई पंडित। अब रामाई पंडित ने क्या कहा? अद्वैताचार्य से, हे आचार्य, जिन प्रभु को प्रकट करने के लिए आपने आंसू बहाए, बहुत आराधना की, असंख्य व्रत किए, उपवास किए, वही प्रभु आपके लिए प्रकट हो गए, अपना भक्तियोग लुटाने के लिए ही उनका आगमन हुआ है, और आपके लिए आज्ञा हुई है क्या कि वहां चल करके नृत्य करो, स्तुति करो और गान करो, विधि के अनुसार पूजा की सब सामग्री लेकर स्त्री सहित चलिए, ये प्रभु की आज्ञा है। श्रीमन महाप्रभु के जीवन स्वरूप नित्यानंद भी वहां आ गए हैं, मैं क्या कहूँ, आप तो उनको जानते हो, मेरे भाग्य में होगा तो आप सबके एकत्र दर्शन करूंगा। जब रामाई के मुख से इतनी बातें सुनी तो आचार्य देव भुजाओं को उठाकर रोने लगे, रोते रोते आनंद में बेसुध हो गए। ये देखकर सब लोग विस्मित हो गए, थोड़ी देर में होश आया तो हुंकार करने लगे और अपने प्रभु को ले आया हूं ऐसा कहने लगे, हुंकार करते हैं कि मैं ले आया हूं। मेरे लिए प्रभु अपने वैकुंठ को छोड़कर आ गए, ऐसा कहकर वे रोते हुए पृथ्वी पर गिर गए। जगन माता अद्वैत पत्नी सीता देवी भी प्रभु के प्रकाश का समाचार सुनकर आनंद में रोने लगी। श्री अद्वैत प्रभु का पुत्र अच्युतानंद जो निपट बालक था वह भी निरंतर रोने लगा। अद्वैताचार्य अपनी पत्नी और पुत्र के सहित रो रहे थे और उनको घेर कर चारों ओर उनके सेवक लोग भी रोने लगे। क्यों? प्रेम के कारण। तो सेवकों में भी प्रेम आ गया। कोई कहीं पड़ा रो रहा है, किसी को अपने पराये की सुध नहीं। इस प्रकार अद्वैताचार्य का घर प्रेममय हो गया। अद्वैताचार्य स्थिर होना चाहते हैं परंतु हो नहीं पाते, भावावेश में अपने शरीर को लगातार हिला रहे हैं। जार लागे करे आछे विस्तार क्रंदन, जार लागे करे ला विस्तार आराधन, जार लागे करे ला विस्तार उपवास, ते प्रभु तो मार लागे हई ला प्रकाश, भक्ति योगे बिलाई ते तार आगमन, तो मारे से आज्ञा करे वारे विवर्तन, षडंग पूजा रे विधि योगे सज लिया, प्रभु रे आज्ञाए चल शस्त्री के हैया, नित्यानंद स्वरूप रे हैला आगमन, प्रभु रे द्वितीय दे तुम्हारे जीवन, तुम इसे जाना हा तारे मोहे की कही मुँह, भाग्य था के मोर तब एकत्र देखी मुँह, रामाई रे मुखे जब जत के सुनीला, तखने तो लिया बाहु कांदी तेला गिला, कांदिया हाईला मूर्छा आनंद सहित, देखिया सकल गण हाईला विस्मित, छाने के पाइया बाह कर हंकार, आनिलु आनिलु बोले प्रभु आपे नाम, मोरे लागे प्रभु आ मोरे लागे प्रभु आईला वैकुंठ छानिया, एते बलि कांदे पुण्य भूमि ते पड़िया, अदत गृहिणी पति व्रत जगन माता, प्रभु रे प्रकाश सुनि कांदे आनंदिता, अद तेरे तनय अच्युत आनंद नाम, परम बालक से हो कांदे अभिराम, कांदे ने अद्वैत पत्नी पुत्र रे सही थे, अनुचर सब बेड़ी कांदे चारी भीते, केवा कौन देगे कांदे नाही पारा पर, कृष्ण प्रेम माय हैला अद्वती रे घर, इस तरह है अद्वत है ते नार स्थिर, भावा विषय ने रेवा दी दोला ये शरीर, अद्वत ने रमाय पंडित से पूछा प्रभु ने मेरे लिए क्या कहा था, उसने उत्तर दिया शीघ्र चलने के लिए, अद्वत बोले सुनो रामाय पंडित, वे मेरे प्रभु हैं, इस बात का विश्वास मुझे तभी होगा जब वे अपना ऐश्वर्य मुझको दिखाएंगे और अपने चरण उठाकर मेरे मस्तक पर रखेंगे, वो मेरे प्रभु हैं अगर है? तो मुझे विश्वास तभी होगा जब क्या करेंगे वो अपना ऐश्वर्य दिखाएं और क्या करें अपने चरण मेरे मस्तक पर रखें, तब मैं जानूंगा कि वे मेरे प्राणनाथ हैं, ये मैं तुमसे सत्य दृढ़ सत्य कहता हूं। रामाय पंडित बोले प्रभु इस विषय में मैं क्या कहूं, अगर मेरे भाग्य में होगा तो मैं अपनी आंखों से देख पाऊंगा जो आपकी इच्छा है प्रभु वह उनकी भी है, ये अवतार ही आपके लिए हुआ है, आप जैसा चाहोगे वैसे ही करेंगे, वो आपके बस में है। रमाय पंडित के वचनों से अद्वैत संतुष्ट हुए और तुरंत ही शुभ यात्रा के लिए तैयारी करने लगे, वे पत्नी से बोले शीघ्र तैयार हो जाओ और पूजा की सामग्री लेकर आगे आगे चलो, वे पतिव्रता देवी चैतन्य महाप्रभु के तत्व को जानती हैं, सुगंध माला धूप वस्त्र दूध दही सुंदर नवनीत कपूर पान ये पूजा की आवश्यक सामग्रियों को लेकर चल पड़ी। अद्वैत महाप्रभु पत्नी को लेकर चले तो सही परंतु मेरे आने की बात प्रभु से नहीं कहना, ऐसा रामायण को समझा दिया, क्या क्या समझाया, हाँ उनसे नहीं बताना कि मैं आ गया हूं, तो क्या बताना उनसे कहना कि नहीं आया मैं देखें तब वे क्या कहते, मेरे प्रभु मैं तो नंदन आचार्य के घर में छिप कर रहूंगा और तुम वे नहीं आए ऐसा कहकर प्रचार कर देना, परंतु प्रभु तो सबके हृदय में विराजमान है, इसलिए अद्वैत आचार्य का संकल्प उनके चित्त में प्रत्यक्ष हो गया, उसी समय ही प्रभु को पता चल गया कि वो क्या सोच रहा है और नवद्वीप में उनका आगमन जान करके तुरंत ही श्रीवास पंडित के घर को आ गए, जैसे आए नवद्वीप में तुरंत चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर में आए, चैतन्य महाप्रभु के जो निज भक्त हैं वे उनकी इच्छा से श्रीवास के घर में आ गए और प्रभु आवेश में हैं ये समझकर सबको शंका हो रही है, वे सब चुपचाप बैठे रहे, कुछ बोले नहीं भक्त लोग कि अब प्रभु क्या बोलेंगे, कुछ पता नहीं क्या बोलेंगे प्रभु जी। अद्वैत बोलाए सुन रामाई पंडित, मोरे प्रभु हे न ताबे आमारे प्रतीत, आपने ऐश्वर्य दे मोहारे देखाए, श्री चरण तुल दे आमारे माथाए, ताबे से जानी मोर हाय प्राण नाथ, सत्य सत्य एक ही लो तो मात, रामाई बोले मैं प्रभु मोय की बलि, यदि मोरे भाग्य था कि नाया ने देखी जे तुम्हारा इच्छा प्रभु से तहार तुम्हारा निमित्त प्रभु यही आवे तार हई लादे तुष्ट मेरे बचने शुभ यात्रा उद्योग करी ला तत्व छणे पत्नी रे बोली ला झाट हाओ साव धाम लई या पुजार सज चल आगुयान पति व्रत से चेतन रे तत्व जाने गंध माल धूपे वस्त्र असे विधाने क्षीर दधि सुन वन कर पूरे तांबूल लई या चली ला जत सब अनुकूल सपत्नी के चली ला आद्वैत महाप्रभु रामेरे ने से दे यहाँ ना कही बकबू न आईला आचार्य तुम्हें बली बचन देखी प्रभु मोरे तब की बोले तखन गुप्त था को मोई नंदन आचार्य रे घरे न आईला बाली तुम्हें करी वा गोचरे सबारा हृदय वैसे प्रभु विश्वंभर अद्वैत संकल्प चित है गोचर आचार्य रे आगमन जानिया आपने ठाकुर पंडित गृह चलीला तखने प्राय जत चैतन्य रहने जे भक्तगण प्रभु रे इच्छा है सब मिलीला तखन आवेश चित्त प्रभु सबे ही बुझिया सत्संग के आछे न सब नीरव हैया। अब अद्वैताचार्य छिप करके कहाँ पर हैं, किसके घर में? नंदन आचार्य के घर में है। और चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर आ गए? श्रीवास के घर में आ गए हैं। अच्छा, अब इतने में क्या हुआ, देवताओं के नाथ विश्वंभर प्रभु हुंकार करते हुए विष्णु सिंहासन पर जाकर बैठ गए और बार बार कहने लगे नाला आ रहा है, नाला आ रहा है। नाला किसको कह रहे हैं? अद्वैताचार्य को कह रहे हैं, नाला आ रहा है, नाला आ रहा है, नाला मेरी ठकुराई देखना चाहता है। श्री नित्यानंद प्रभु सब संकेत को जानते हैं, वे समझ गए प्रभु इस समय अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करना चाहते हैं। उन्होंने तुरंत ही छत्र लेकर प्रभु के मस्तक पर धारण कराया। गदाधर भी भाव समझ करके पान कपूर देने लगे और सब भक्त लोग यथायोग्य सेवा में तत्पर हो गए। कोई स्तुति पाठ करने लगे, सब सेवा काम में लग गए। ऐसे समय में रामाई पंडित सामने दिखाई पड़े तो रामाई पंडित कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अद्वैताचार्य ने कहा था कह देना कि आचार्य नहीं आए, लेकिन वो उनके कुछ ना कहने पर स्वयं रामाई से कहने लगे मेरी परीक्षा के लिए नाढ़ा ने तुमको भेजा है, मैं जानता हूं वह नाढ़ा आ गया है। ऐसा कहते हुए प्रभु सिर को हिलाते हुए कहने लगे सब कुछ जान करके भी ये नाढ़ा मुझे हमेशा छेड़ता रहता है। अद्वैताचार्य को नाढ़ा कहते हैं। आप तो वहां नंदन आचार्य के घर में रह गया और तुझे मेरी परीक्षा के लिए भेज दिया है, तुम जाकर शीघ्र ही उनको यहां ले आओ, ये मैं प्रसन्न मुख से कह रहा हूं। रामायण पंडित फिर बड़े आनंद से चले और जाकर उन्होंने अद्वैत प्रभु को सब वृत्तांत सुनाया। अद्वैताचार्य सुनकर आनंदमग्न हो गए और प्रभु के निकट चले आए, उनके मन का संकल्प पूरा हो गया। दूर से ही दंडवत प्रणाम करके और स्तुति पढ़ते हुए वे स्त्री के साथ वहां आए और निर्भय पद होकर प्रभु समीप आ पहुंचे। अखिल ब्रह्मांड विस्मितकारी एक अद्भुत वेश का दर्शन उन्होंने किया। हुंकार कराए प्रभु त्रिदशहरे राय उठिया बसील प्रभु विष्णु रे खटाए नाला ऐसे बोले बारे बारे नाड़ा चाहे मोर ठकुराल देखी बारे नित्यानंद जाने सब प्रभु रे इंगित बुझिया मस्तक के छत्र धारी ला त्वरित गदा धारे बुझ दे कर पूरे तांबूल सर्व जन करे सेवा जिन अनुकूल के हो पड़े सुति के कौन सेवा करे हे नहीं समय आसे रामाई गोचरे नहीं कहे ते प्रभु बोले रामाई रे मोरे परीक्षित नाला पठाई ले तुरे नाला ऐसे बाले प्रभु मस्तक ढोलाए जानी आओ नाला बोरे चालाए सदाएं ये था ये रहिले नंदनाचार्य रे घरे मोरे परीक्षित नाला पठाई ले तुरे आनगी शीघ्र तुम्हें था ये तहाने प्रसन्न श्री मुखे आमी बाली ले आपन आनंद चाली ला पुने रामाई पंडित सकल अद्वैत स्थान कारी ला विजित सुनिया आनंद बासे अद्वैत आचार्य आयेला प्रभु स्थाने सिद्ध हिल कार्य दूर था के दंडवत कारिते कारिते शस्त्र के आय से स्तव पाड़िते पाड़िते आयेला निर्भय पद हिला सन्मुखे निखिल ब्रह्मांडे अप रूप वेश देखे। अब क्या देखा, प्रभु का करोड़ों कामदेव को विजय करने वाला सुंदर लावण्य है, ज्योतिर्मय सुंदर सोने के समान शरीर है, प्रसन्न मुख करोड़ों चंद्रमाओं का स्वामी है। उस प्रसन्नता से लगता है कि अद्वैताचार्य के प्रति बहुत दया है उनकी। करोड़ों सोने के खंभों जैसे उनके भुज युगल हैं, दो भुजाएं जिन पर रत्न जटित दिव्य अलंकार सुशोभित हैं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स और कौस्तुभ महामणि वनमाला शोभा दे रही है, कानों में कुंडल कैसे हैं, मकर के आकार के कुंडल हैं, करोड़ों सूर्य को पराजय करने वाला उनका अनंत तेज है, लक्ष्मी देवी चरण कमलों की सेवा कर रही हैं, अनंत देव छत्र धारण किए हैं और पद नख हैं या मणियां पहचाने नहीं जाते हैं, पैर के नाखून हैं या मणियां हैं पहचानी जाती है, त्रिभंग खड़े हंसते हुए बंसी बजा रहे हैं, क्या तो प्रभु क्या उनके सेवक और क्या अलंकार, सबको अद्वैताचार्य ने ज्योतिर्मय छोड़ और कुछ नहीं देखा। और उन्होंने देखा कि चतुर्मुख ब्रह्मा जी और पांच मुख वाले शंकर जी और सौ मुख वाले देवता भी चरणों पर पड़े हुए हैं उनके, सुख नारद आदि बहुत मकर के रथ पर से उतर करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। फिर देखते हैं कि हजार मुख वाले सेठ जी स्तुति कर रहे हैं और चारों ओर ज्योतिर्मय देवता गण विद्यमान हैं। उन्होंने दृष्टि घुमाकर देखा तो उनको अपने पांवों के नीचे हजारों देवता पड़े हुए कृष्ण कृष्ण कहते हुए दिखाई दिए। किसको? अद्वैताचार्य को। उन्होंने दृष्टि घुमाकर देखा तो उनको अपने पांवों के नीचे, हाँ पूजा के समय जिन देवताओं को वे ध्यान करते थे आज वे चारों ओर अपने पांवों के ही नीचे पड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर अद्वैत दंडवत प्रणाम को छोड़ हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। फिर देखते हैं कि सात सात फणों वाले महानाग अपनी फण उठा करके स्तुति कर रहे हैं, आकाश दिव्य रथों से भर गया है और हाथी हंस और घोड़ों ने वायु का मार्ग ही रोक लिया है। उन्होंने देखा करोड़ों करोड़ों नाग पत्नियां अश्रुपूर्ण नेत्रों से कृष्ण कृष्ण कहकर स्तुति करते हुए विद्यमान हैं, पृथ्वी और आकाश में खाली स्थान नहीं रहा, इतने देवता हैं, नाग हैं, महर्षियों के झुंड भी आसपास पड़े प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु की इस महान ठकुराई के दर्शन करके पति पत्नी दोनों बड़े भारी संभ्रम को प्राप्त हुए और कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हुए। जिन या कंदर पे कोटे लावण्य सुंदर ज्योतिर्मा कानक सुंदर कलेवर प्रसन्न वन कोटे चंद्र रे ठाकुर अद्वितीय प्रति जैन सदा प्रचुर दो बाहो कोटे कानक स्तंभ जिनी तहीं दिव्य अलंकार रत्न रखे चन श्रीवत्स कौस्तुभ महामणि शोभे वक्षे मकर कुंडल वैजंती माला देखे कोटि महासूर्य जिने तेज नाही अंत पाद पद्म रामा छत्र धाराए अनंत केवा नखे केवा माने न पारे चिनिते त्रिभंगे बाजाए बांसी हसीते हसीते केवा प्रभु केवा गाने केवा अलंकार ज्योतिर्मय भाई के छुना ही देखे आर देखे पाड़े अच्छे चारे पंच सत मुख माँ भय स्तुति करे नारदादि सुख मकर बहान रथ एक वरंगन दंड पारणाम अच्छे जेन गंगा समान तब देखे स्तुति करे सहस्र बदन चारी देखे देखे ज्योतिर्मय देव गण उलटिया चाहे न जे चारण रे तलिन सहस्र सहस्र देव पाड़ी कृष्ण बोले जे पुजारे समय जे देव ध्यान करे ताहा देखे चारी देखे चारणे रे तलिन देखिए संभ्रम दंड पारणाम छाणे उठिला अद्वैत अद्भुत उठिला अद्वैत अद्भुत देखी बड़ी देखे सत्य फणाधर महानग गण ऊर्ध बाहु स्तुति करे तुली सब फण अंतरिक्ष परिपूर्ण देखे दिव्य रथ गज हंस अश्व निरोधिले वायु पथ कोटि कोटि नागे वधु सजले नयने कृष्ण बाली स्तुति कर देखे विद्यमान क्षिति अंतरिक्ष स्थान नाई अव काशे देखी पाड़ी अच्छे महर्षि गण पासे माँ ठाकुर देखे पाईला संभ्रम पति पत्नी के छुपाली वारी ने है छम तब परम दयालुमति विश्वंभर श्री अद्वैत की ओर देख करके बोले तुम्हारे संकल्प को पूर्ण करने के ही लिए मैं अवतीर्ण हुआ हूं। तुमने मेरी बड़ी भारी आराधना की है। मैं क्षीर सागर के भीतर सो रहा था। कौन कह रहा है? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं क्षीर सागर में सो रहा था, परंतु तुम्हारे प्रेम की हुंकार से मेरी निद्रा भंग हो गई है? मेरी नींद तुमने खराब कर दी। क्यों? प्रेम की हुंकार से मैं सो रहा था। जीवों के दुख को देखकर जब उसे तुम नहीं सह सके तो सब जीवों का उद्धार करने के लिए तुम मुझे यहां ले आए। चारों ओर तुमने जो ये सब गण देखे हैं, इन सब का जन्म तुम्हारे ही कारण हुआ है। जिन वैष्णवों के दर्शन की ब्रह्मा भी मन में कामना किया करते हैं, उनको तुम्हारे कारण अब सब लोग देख पाएंगे। परम सदाए मति प्रभु विश्वंभर चाहिया अद्वैत प्रति करीला उत्तर तुम्हारे संकल्प लागे अवतीर्ण आमी विस्तारे आमार आराधना कैले तुमी श्रुतिया आछिलो चीर सागर भीतरे निद्रा भंग मोर तोर प्रेमे रे हुंकारे देखिए जीवेरे दुख न पारे सहित आमारे आनिले सर्व जीवे उधारिते जते के देखिले चतुर देखे मोरे गण साबारे हैले जन्म तुम्हारे कारण जे वैष्णव देखिते ब्रह्मा दि भावे मने तो माहिते ताहा देखिबे के सर्व जने। महाप्रभु के इन वचनों को सुनकर अद्वैत भुजा उठाकर स्त्री सहित रोने लगे और कहने लगे आज ही मेरे लिए दिन का प्रकाश सफल हुआ, कारण कि आज मेरी समस्त अभिलाषा सफल हो गई। आज मेरे जन्म कर्म सब सफल हुए, जो आज मैंने आपके युगल चरणों के साक्षात दर्शन किए, जिनकी घोषणा मात्र ही वेद करते हैं परंतु जिनको देख नहीं पाते, ऐसे आप मेरे लिए प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। आप प्रकट हुए हैं, ये मेरी शक्ति से नहीं, आप प्रकट हुए हैं ये मेरी शक्ति से नहीं, फिर कैसे? यह तो केवल आपकी करुणा है। आपके बिना कौन जीवों का उद्धार कर सकता है? इस प्रकार कहते कहते आचार्य प्रेम में बह चले। तब प्रभु बोले मेरी पूजा का कार्य करो। प्रभु की आज्ञा पाकर आचार्य देव महान हर्ष के साथ श्री चैतन्य चंद्र के श्री चरणों की पूजा अशेष विशेष प्रकार से करने लगे। पहले सुगंध जल से चरण कमलों को धोकर उन पर गंध द्रव्य लेपन किया, फिर दिव्य तुलसी की मंजरी को चंदन में डुबोकर अर्घ्य के साथ चरण कमलों पर चढ़ाया। गंध पुष्प धूप दीप आदि पंचोपचार से श्री चरणों की जब वे पूजा कर रहे थे तो आपके नेत्रों से प्रेम जल की महाधाराएं बह रही थीं। फिर पांच बत्ती जलाकर उन्होंने प्रभु की आरती उतारी और प्रणाम किया। अंत में वे जय जयकार ध्वनि करने लगे। फिर षोडश उपचार से श्री चरणों की पूजा करके दोबारा माला वस्त्र और आभूषण अर्पित किए। पांच रात्र की विशेष विधि के अनुसार पूजा करके इस श्लोक को पढ़ते हुए उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। प्रभु रे वाक्य अद्वैत सुनिया उर्द बाहु करी कंधे सत्री के हयाम आज से सफल मोर दिन पर कासम आज से सफल कई लो जत अभिलाषम आज मोरे जन्म कर्म सकल सफल साक्षात देखी लो तोर चोर चरण जुगल घोषे मात्र चारे वेद जारे नहीं देखे हे न तुम्हें मोरे लागी हईला पर देखे मोरे के छो सकते नाये तो मारे करुणा तो माँ भाई जीव उद्धारी वे कौन जनम बालिते बालिते प्रेम भाते ने आचार्य प्रभु बोले आमारे पुजारे करे कार्य पाई है प्रभु रे आज्ञा परम हरि से चैतन्य चरण पूजे अशेष विशेष चैतन्य चरण दो सुवासित जले शेषे गंदे परिपूर्ण पाद पद्म ढाले चंदन डुबाए देवे तुलसी मंजरी अर्घ्य रसा हित दिल चरण उपरी गंध पुष्प धूप दीपे पंच उपचारे पूजा करे प्रेम जले बहे महाधारे पंच शिखा ज्वाले पुन करे ने बंदनम शेष जय जय ध्वनि करे घोषणम करिया चरण पूजा सोड़ा सो पचारे आर बार दिला माल्य वस्त्र अलंकारे शास्त्र दृष्टि पूजा करे पटल विधाने श्लोक पढ़ी करे दंड परिणामे। आप क्या श्लोक पढ़ते हैं अदुजारे? गो ब्राह्मण हितकारी आपको नमस्कार है, जगत हितकारी श्री कृष्ण को नमस्कार है, श्री गोविंद को बार बार नमस्कार है। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हैं हैं, ये विष्णु पुराण का ये श्लोक है। पहले ये श्लोक पढ़ करके नमस्कार किया, फिर शास्त्र के अनुसार स्तुति करने लगे। हे सर्व प्राणनाथ विश्वंभर देव आपकी जय हो जय हो, हे करुणा सागर गौर चंद्र आपकी जय हो जय हो, हे भक्तों के वचन सत्य करने वाले आपकी जय हो जय हो, हे महा अवतारी महाप्रभु आपकी जय हो जय हो, हे लक्ष्मी के मन विनोदकारी रूपधारी आपकी जय हो जय हो, हे श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि से विभूषित आपकी जय हो जय हो, हरे कृष्ण मंत्र के प्रकाशक आपकी जय हो जय हो, अपनी भक्ति प्रेम भक्ति को विलास पूर्वक स्वयं ग्रहण करने वाले आपकी जय हो जय हो, हे शेष साई महाप्रभु आपकी जय हो जय हो, हे सर्व जीवों के आश्रय आपकी जय हो जय हो। आप विष्णु हो, आप कृष्ण हो, आप नारायण हो, आप मत्स्य हो, आप कूर्म भगवान हो, आप ही सनातन हो, आप ही वराह प्रभु हो, वही वामन भगवान हो, आप ही युग युग में वेद की रक्षा करते हो, आप ही राक्षस कुल का नाश करने वाले जानकी जीवन श्री राम हो, आप ही निषाद राज गुहे के वरदान देने वाले और अहल्या के उद्धार करने वाले हो, आप ही प्रहलाद के लिए अवतार लेने वाले हो, हिरण्यकश्यप का वध करने वाले हो, तब आपका ही नाम नरसिंह पड़ा है। हे दुजराज आप ही सब देवताओं के चूड़ामणि स्वरूप हो, आप ही नीलाचल में ही भोजन करते हो, आपको ही चारों वेद ढूंढते रहते हैं, फिर भी किंतु आप यहाँ आकर छिपे बैठे हो, छिपने में आप प्रभु बड़े ही धीर वीर हो, परंतु भक्त जन भी आपको ढूंढकर प्रकाशित कर लेते हैं, आप बहुत धैर्य धारण करते हो छिपने में, लेकिन भक्त लोग आपको ढूंढ ही लेते हैं। आपका अवतार संकीर्तन आरंभ करने के लिए हुआ है, अनंत ब्रह्मांडों में आपके अलावा और कुछ नहीं है, ये जो आपके युगल चरण कमल हैं, इनके रसा स्वादन में ही श्री गौरी शंकर बेहवल रहते हैं, यही वे श्री चरण हैं जिनकी लक्ष्मी जी एकाग्र चित्त से सेवा करती हैं, और इन्हीं के यश को हजार मुख वाले शेष जी नित्य गाया करते हैं, इन्हीं चरणों की सदा ब्रह्मा जी पूजा किया करते हैं। कौन कह रहा है? इनके ही तत्व को श्रुति स्मृति पुराण सब वर्णन करते हैं, इन्हीं चरणों ने सत्यलोक का आक्रमण किया था और इनकी अर्पण करने से ही राजा बलि का सिर धन्य हुआ था, इन्हीं श्री चरणों से गंगा जी का अवतरण हुआ है, जिसके महान वेग को महादेव जी ने अपने शीश पर धारण किया। श्लोक पढ़े आगे नमस्कार करी शिष्टि करे नाना शास्त्र अनुसारी, जय जय सर्व प्राणनाथ विश्वंभर, जय जय गौर चंद्र करुणा सागर, जय जय भक्त वचन सत्यकारी, जय जय महाप्रभु महाअवतारी, जय जय सिंधु सुत रूप मनोरम, जय जय श्रीवत्स कौस्तुभ विभूषण, जय जय हरे कृष्ण मंत्र प्रकाश, जय जय निज भक्त ग्रहण विलास, जय जय महाप्रभु अनंत शयन, जय 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 सर्व जीवरे शरण, तुम्हें विष्णु तुम्हें कृष्ण तुम्हें नारायण, तुम्हें मत्स्य तुम्हें कूर्म तुम्हें सनातन, तुम्हें सेवा राह प्रभु तुम्हें सेवा मन, तुम्हें करे जोगे जोगे भेदेरे पालन, तुम्हें रक्षा कोले हम दजाना के जीवन, तुम्हें गुहे वर दत्त आहल्य मोचन। तुम इसे प्रहलाद लागे कहले अवतार, हिरण्यवधी नारसिंह नाम जान, सर्वदेव चूड़ा माने तुम्हें द्विजय राज, तुम इसे भोजन कर नीला चल माजन, तुम्हारे से चारे वेद बोले अंधे अनवेशिया, तुम्हें एथा आती रही अच्छे लुकाइया, लुकाई ते बाड़े प्रभु तुम्हें महाधीर, भक्त जन धारे तुम कराए बाहिर। संकीर्तन आरंभ तुम्हारे अवतार, अनंत ब्रह्मांड तुम वही नाही आर, यही तोरे दुख काने चरण कमल, इहारे से रस गौरी शंकर बेबल, यही से चरण राम से एक मन, इहारी से यस गाय सहस्र बदन, यह से चरण ब्रह्म पूजय सदाए, छुति स्मृति पुराण इहारे तत्व गाये, सत्य लोगे आक्रम मिले ऐसे चरण, बलि से धन्य है इहारे अर्पण, ऐसे चरण है ते गंगा अवतार, शंकर धारी लसेरे महावेग जान, कोटि बृहस्पति जनि अद्वितीय बुद्धि, भसी भाले मते जाने से चैतन्य रे शुद्धि, वर्णित चरण भाजे नयाने रे जले, पड़िला दिघल हई चरण रे तले, सर्वभूत अंतर्यामी श्री गौरंग राय, चरण तुलिया दिले अद्वित मथाय, चरण अर्पण से रे करिला जखम, जय जय महाध्वनि तैले तखन। अद्वितीय की बुद्धि करोड़ों बृहस्पतियों की बुद्धि को भी जीतने वाली थी। श्री चैतन्य देव के तत्व का भले भांति वे जानते हैं, चरण स्तुति करते हुए उनका मुख मंडल नेत्रों के अश्रुजल से भीग गया और वे श्री चरणों के तले लंबे होकर पड़ गए। सर्व प्राणियों के अंतर्यामी श्री गौरांग राय ने अपना चरण उठाकर श्री अद्वैत के शीर्ष पर रख दिया। शीर्ष पर चरण अर्पण करते ही जय जय महाध्वनि होने लगी। इस अपूर्व चरित्र को देखकर अर्थात महाप्रभु कल तक तो अद्वैत के चरण कमल पकड़ते थे, आज भी अद्वैत के मस्तक पर अपने चरण अर्पण कर रहे हैं, ये देखकर सब बेहाल हो गए और हरि हरि कहते हुए कोलाहल करने लगे। कोई भूमि पर लोट पोट होने लगा तो कोई ताल ठोंकते हुए उछलने लगे और कोई किसी को गलकंठ कर जोर जोर से रोने लगे। अपने पूर्व संकल्प के अनुसार श्री चरणों को अपने मस्तक पर प्राप्त करके अद्वैताचार्य स्त्री सहित पूर्ण मनोरथ हो गए। तब प्रभु विश्वम्भर श्री अद्वैत को आज्ञा करते हुए बोले, ओ नाला मेरे कीर्तन में नृत्य करो। प्रभु की आज्ञा पाकर आचार्य गोसाई वहीं पर नाना प्रकार के भक्ति भावों को प्रकट करते हुए नृत्य करने लगे। तब तो कीर्तन की अति मनोहर ध्वनि होने लगी और अद्वैताचार्य गौर प्रभु के सम्मुख नाचने लगे। एक क्षण में तो वे जोरदार नृत्य करते, दूसरे क्षण में मधुर नृत्य करते और फिर दांतों में बहुत से तिनकों को उठा लेते। वे क्षण क्षण में उठते, क्षण क्षण में गिरकर लोटपोट हो जाते, क्षण में लंबी लंबी सांस लेते और क्षण में मूर्छित हो जाते। जिस समय जो कीर्तन सुनते उस समय वैसे ही हो जाते, एक भाव में स्थिर ही नहीं रह पाते, बस आनंद में बहे ही जा रहे थे। अंत में केवल दास भाव में आविष्ट हो गए। दास भाव का प्रभाव अचिंत है, समझ में नहीं आ सकता। गाड़ा गाड़े जाए के ओ माल थान मारे, कारो गाला धारे के हो कांधे उच्च स्वरे, शस्त्र के अद्वैत है पूर्ण मनोरथ, पाई चरण से रे अपूर्व अभिमत, अद्वैत रे आज्ञा कैला प्रभु विश्वम्भर, आरे नाड़ा तो हमारे कीर्तन नृत्य कर, पाई या प्रभु रे आज्ञा आचार्य गोसाई, नाना भक्ति योग नृत्य कारे सही छाई, उठिले कीर्तन ध्वनि अति मनोहर, नाचिन अद्वैत गौर चंद्र गोचर, छाने वा विशाल नाचे छाने वा मधुर, छाने वा दसाने तृण कार ये प्रचुर, छाने छाने उठे छाने पाड़े गाड़ी, छाने छाने उठे छाने पाड़ी गाड़ी जाए, घने छाने घने स्वास्थ्य वाहे छाने मूर्छा पाए, जे कीर्तन जखन सोना है सही है, एक भाव स्थिर नहे आनंदे बसाए, आवश्यक है आशीषा बेरा हेदा सेवा बोझन न जाए सही अचिंत प्रभाव धाई या जाए ठाकुरे रे पासे नित्यानंद देखी या ब्रोकोटी करी हसे हसे बोले भाले है ला आई ला नेताई एत दिन तुम्हारे लागिले नहीं पाई कौन जाई वा को थाए पारी रखो मुं बांधिया छाड़े बोले प्रभु छाने बोले माता भैया अद्वैत चरित्र हसे नित्यानंद राय एक मूर्ति दुई भाग कृष्ण लीलाए पूरे बलिया छे नित्यानंद नाना रूपे चैतन्य रे सेवा करे अशेष कौतुके श्री अद्वैत दौड़ दौड़ कर महाप्रभु के पास जाते और नित्यानंद जी को देखकर भौहें टेढ़ी करके हंसते और कहते अच्छा हुआ नेताई जो तुम आ गए इतने दिन तक तुम्हारा पता ही नहीं था अब जाओगे कहाँ आज तो तुम्हें बांध कर रखूंगा क्षण में तो नेताई से प्रभु कहकर बोलते क्षण उनको मतवाला कहते प्रभु कहते फिर मतवाला कहते श्री अद्वैत के इन चरित्रों पर नित्यानंद हंसने लगे श्री कृष्ण की गौर स्वरूप की लीला में ये दोनों निमाई और अद्वैत एक ही मूर्ति के दो भाग हैं अर्थात श्री अद्वैत महाविष्णु हैं और महाविष्णु मूल संकर्षण श्री नित्यानंद के अंश हैं अर्थात श्री निताई मूल भाग हैं और श्री अद्वैत अंश रूप भाग हैं श्री नित्यानंद नाना रूप में अशेष कौतुक के साथ चैतन्य चंद्र की सेवा करते हैं किसी रूप में चैतन्य गुण कहते हैं किसी रूप में ध्यान करते हैं किसी रूप में छत्र और सैया हैं तो किसी रूप में उनका गुणगान करते हैं श्री नित्यानंद और अद्वैत में भेद रहित प्रेम जानिए ऐसा जो इनके इस परस्पर अभिन्न प्रेम को इस अवतार में जानता है वही भाग्यवान है इन दोनों में जो कुछ कलह लीला देखने में आती है वो सब ईश्वर के व्यवहार के कौतुक विनोद हैं सब अचिंत हैं प्राकृतिक मन बुद्धि के अगम में हैं इन दोनों की प्रीति ऐसी है जैसे शेष और शंकर में परस्पर प्रीति है प्राकृतिक मन बुद्धि के अगम में है इन दोनों की प्रीति जैसी है ऐसी है जैसे शेष और शंकर जी की परस्पर प्रीति है दोनों ही कृष्ण चैतन्य के कलेवर हैं जो इस तत्व को ना समझकर इन दोनों के कलह पक्ष को लेता है एक की वंदना और दूसरे की निंदा करता है वो महत अपराध के कारण मरता है विनाश को प्राप्त होता है धाई या जाए ठाकुर रे पासे नित्यानंद देखी या ब्रो कोटी करी हसे हसे बोले भाले है ला आई ला नेताई एते दिन तुम्हारे नागाली ना ही पाई जाई वा को थाए आज राखी मो बांधिया छाने बोले प्रभु छाने बोले माताई मातालिया आदत चरित्र हसे नित्यानंद राय एक मूर्ति दो भाग कृष्ण लीलाए पूर्व बाली अच्छे नित्यानंद नाना रूपे चैतन्य रे सेवा करे आशीष कौतुके कोनो रूप कहे कोनो रूपे करे ध्यान कोनो रूपे छत्र से या कोनो रूपे गान नित्यानंद अद्वैत आवेद प्रेम जान यही अवतारे जाने से भाग्यवान जे के छुका लहा लीला देखा दुहार आचिंत रंग ईश्वर व्यवहार जिना ये दुहिर प्रीति जन अनंत शंकर दुई कृष्ण चैतन्य रे प्रिय कलेवर जिना बुझे तुम्हारा काला पक्ष धरे एक बंदे आर निंद से जान मरे अद्वैत के नृत्य को देखकर सब वैष्णव सर्वथा आनंद सागर में डूब गए तब श्री अद्वैत के लिए वहीं ठहर जाने की आज्ञा प्रभु ने की तत्काल उस आज्ञा को सर्वधार्य करके इन्होंने नृत्य बंद कर दिया महाप्रभु ने अपने गले की माला उनको देकर हंसते हुए बर मांगो कहा अद्वैत आचार्य ने सुन करके भी कुछ उत्तर नहीं दिया प्रभु विश्वंभर बार बार मांगो मांगो कहते अंत में अद्वैत आचार्य बोले अब मैं क्या वर मांगू मैंने तो जो वर चाहा था वह संपूर्ण पा ही लिया है अब आपका साक्षात करके आपके सामने नाच लिया तो मन के सभी मनोरथ पा चुका प्रभु साक्षात आपके अवतार के दर्शन कर लिए तो अब क्या मांगू और रहे भी क्या गया मांगने को क्या इस बात को आप नहीं जानते हैं कि मैंने क्या चाहा था आपके दिव्य दर्शन से मैंने क्या नहीं देखा है। तब प्रभु विश्वंभर सिर हिलाते हुए बोले, तुम्हारे निमित्त ही मैं प्रकट हुआ हूँ। मैं घर घर में कीर्तन का प्रचार करूंगा, जिससे कि मेरे यश को गाकर सारा संसार नाच उठेगा। ब्रह्मा शिव नारद जिस भक्ति के लिए तप करते हैं, ऐसी भक्ति में सबको लुटाऊंगा, ये मैं तुमसे कह देता हूँ। श्री अद्वैताचार्य बोले, यदि भक्ति आप लुटावें तो स्त्री शूद्र मूर्ख और नीच जाति को भी वह प्रदान कीजिएगा। जो लोग विद्या धन कुल और तपस्या के अभिमान में आकर आपके भक्त और आपकी भक्ति को बाधा पहुंचाते हैं, वे सब पापी लोग ये देख देख कर दाह से जल मरे, अर्थात पश्चाताप करते हुए उस पाखंड से दूर हो जाएं। चांडाल भी आपके नाम और गुण को गा गा कर नाचें। अद्वैत प्रभु के वचन सुनकर प्रभु ने हुंकार पूर्वक कहा, तुम्हें जो स्वीकार है वही ही होगा। अद्वैत अरण्य देखे वैष्णव सकल, आनंद सागर मग्न हईला केवल, हईले प्रभुर आज्ञा रही बार तारे, तत्क्षण रही लेने आज्ञा रही बार तारे। अपन गलार माला तेरे दिया, वर मांग वर मांग बोले ने हसिया, सुनिया अद्वैत किछु न करे उत्तर, मांग मांग पुनः पुनः बोले विश्वंभर। अद्वैत बोले आर की मांगी मुवर, जे मारे चाहे लो तहाँ पाई लो सकल, तुम्हारे साक्षात्कार अपन न चीन, चितेरे अभिष्ट जत सकली पाई लू, कि चाहे मो प्रभु के वसे से अच्छे आ रहे, साक्षात देखी लू प्रभु तोरे अवतार, कि चाहे मु केवा नाही जाना अपन, केवा नाही देखी तुम दिव्य दर्शन। माथा डोलाइया बोले प्रभु विश्वंभर, तुम्हारा निमित्त आमि हई लू गोचर, घरे घरे करे मु कीर्तन परचार, मोरे अस नाचे जन सकल संसार। ब्रह्मा भवन आरदा दिजारे तप करे, जेने भक्ति बिलाई वंजिले, हेने भक्ति बिलाई मोबाइल तुम्हारे। अद्वैत बोले ने आदि भक्ति बिलाइया, स्त्री शूद्र आदि जत मूर्खे रे जे दीवा, विद्या धन कोले आदि तपस्या रे मदे, तोरे भक्त जे जे जन बाधे। से पापिष्ठ सब सुने न रखे पुड़िया, चंडाल न चुके तोर नाम गुण गम्या। आज तेरे वाक्य सुने कर इला हुंकार, प्रभु बोले सत्य जे तुम्हारे अंगीकार। हाँ, इन सब वाक्यों का साक्षी सारा संसार है। मूर्ख और नीचों पर भी प्रभु की विशेष कृपा हुई। प्रभु के गुणों को गा गा कर चंडाल आदि तो नाच उठे, और भट्ट मिश्र चक्रवर्ती ये केवल निंदा करना ही जानते रहे। ग्रंथ पढ़कर और शीश मुड़ाकर किसी की तो बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई कि वे अपने सर्वनाश के लिए श्री नित्यानंद प्रभु की वृथा निंदा करते रहे। श्री अद्वैताचार्य की प्रार्थना पर जगत को प्रेम प्राप्त हुआ, ये सब कथा इस मध्य खंड में कही गई। श्री चैतन्य देव और अद्वैत प्रभु में जितनी कुछ प्रेम वार्ता हुई, वह सब जगन माता सरस्वती जानती हैं। वही भगवती सब जनों की जिह्वा पर अनंत श्री शेष के समान होकर श्री चैतन्य देव का चैतन्य चंद्र का यश निरवधि गान करती है। समस्त वैष्णवों के चरणों में मेरा नमस्कार है, उनके चरणों में मेरा कोई अपराध ना हो। इस प्रकार श्री आचार्य स्त्री सहित बड़े आनंद को प्राप्त हुए, और उनके युगल चरणों के सानिध्य में मैं श्री वृंदावन दास की लीलाएं गान करता हूं। ये सब वाक्य रे साक्षी सकल संसार, मूर्ख नीचे प्रति कृपा हई लेता हम, चंडाला देना चाहे प्रभु रे गुण ग्रामीण, भट्ट मिश्र चक्रवर्ती सब निंदा जाने। ग्रंथ पाड़े मुड़े मुड़े कारो बुद्धिनाश, नित्यानंद निंदे वृथ जाई वारे नाश। अद्व तेरा बोले प्रेम पाए ले जगतिम, ऐसा काल कथा कही मध्य खंड हईतिम। चेतन अद्व ते जत हईल प्रेम कथम, सकल जाने ने सरस्वती जगन मातम। से भगवती सर्व जने रे जीवाय, अनंत हाइया चेतन रे यस गाय। सर्व वैष्णवे रे पाए मोरे चमत्कार, इथे अपराध किछु न हो गए अमार। शस्त्री के आनंद हिला आचार्य गोसाई, अभी मत पाई रही लसे छाई। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जान,
चांद जान वृंदावन दास कछु पद जोगे गान।
इस प्रकार से ये अग्रचार्य की जो कथा है वो मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाई है। तो इससे क्या पता चलता है अग्रचार्य की महिमा कितनी महिमा है, और चैतन्य महाप्रभु का अद्वैताचार्य से और अद्वैताचार्य का चैतन्य महाप्रभु से कितना प्रेम है। आप किसी का कोई प्रश्न है, इनका अच्छा प्रश्न है, इनका प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं अद्वैताचार्य से कि मैं क्षीर सागर पर सो रहा था, और अद्वैताचार्य तो स्वयं महाविष्णु है, इसको कैसे समझा जाए। हाँ, भगवान चैतन्य जब प्रकट होते हैं तो उनके शरीर में सब अवतार रहते हैं, तो अपने को अगर क्षीर सागर के विष्णु कह रहे हैं तो वो भी ठीक है। अद्वैताचार्य महाविष्णु है, क्षीर सागर के विष्णु नहीं है। अद्वैताचार्य कारण समुद्र के विष्णु है, ठीक है ना। इनका प्रश्न है कि शिव जी को बताया गया पंचमुख पांच मुख वाले, लेकिन शिव जी का कोई फोटो भी नहीं देखा है कि पांच मुख हैं शिव जी के। हाँ, शिव जी का फोटो नहीं मिलता है, लेकिन शास्त्र में बताया गया कि उनके पांच मुख हैं। है कब प्रकट हुए, हाँ इतना तो विवरण मुझे पता नहीं है कि पांच मुख कब प्रकट हुए, लेकिन ये बताया जाता है कि उन्होंने पांच मुख इसलिए प्रकट किए जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा नेत्र प्राप्त हो जाएं भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। एक मुख में तीन नेत्र हैं शिव जी के, तो पांच मुखों में कितने नेत्र हो गए, 15 नेत्र हो गए, है ना। और मुख कितने हुए, पांच मुख हुए और नेत्र 15 हो गए। तो इसका मतलब यह है कि वे कृष्ण को देखना ज्यादा पसंद करते हैं गुणगान की तुलना में। कृष्ण का गुणगान तो करते हैं इसलिए पांच मुख हैं उनके, लेकिन कृष्ण का दर्शन करते हैं 15 नेत्रों से, तो मतलब उनको कृष्ण का दर्शन ज्यादा प्रिय है। और कोई प्रश्न, इनका प्रश्न कि शंकर जी की तीसरी आंख तब खुलती है जब प्रलय होती है, तो यहां पर जो है ना बताया गया कि शंकर जी तीन आंखों से दर्शन करते हैं, तो ये कैसे समझे। जब तीसरी आंख खोलते हैं सृष्टि के विनाश के लिए, तो फिर दूसरे प्रकार से खोलते हैं, आप समझे। और वैसे सामान्य प्रकार से खोलते हैं देखने के लिए तो अलग बात है, अगर लेकिन अगर नष्ट करने के लिए खोलते हैं तो फिर वो अलग बात होती है। मेरा प्रश्न है, तो अद्वैताचार्य को जब पता चला कि उनकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली और भगवान प्रकट हो गए हैं किस रूप में, चैतन्य महाप्रभु रूप में, तो अद्वैताचार्य ने क्या किया, छुप गए, शांतिपुर चले गए। क्यों चले गए शांतिपुर, क्यों छुप गए, इतना तो उन्होंने कई साल तक रोए खूब और प्रार्थना करी और पूजा करी, उपवास किए, और फिर जब भगवान को पता चला कि आ गए हैं उनकी प्रार्थना से, तो वे भाग गए। क्यों, हाँ मैंने जब उनको बुलाया है, इतना बुलाया है, तो वो भी मुझे बुलाएं।
धन्यवाद, हरे कृष्ण।